ओम शांति। हमारे बीच दिव्या दीदी ओआरसी से पधारे हैं। दीदी वैसे तो बचपन से ही ज्ञान में है, इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हुए, और 12 इयर्स से ओआरसी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दीदी ने एमसीए की है, शी हैज डन एमसीए एंड शी हैज डन स्पेशलाइजेशन इन ASP.NET। और आप प्रोफेसर भी रहे हैं, 2 साल आपने BCA स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, आप भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कराते रहते हैं। और अभी दीदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी हमारा ट्रेनिंग सेशन जो सेकेंड सेशन है, SIP मॉड्यूल डिजिटल बैलेंसिंग एंड होलिस्टिक वेलबींग। दीदी जी
ओम शांति। तो बहन ने अनाउंस किया डिजिटल बैलेंसिंग एंड होलिस्टिक वेलनेस, तो हम दोनों टॉपिक नहीं कर रहे, हम एक ही टॉपिक करेंगे, डिजिटल बैलेंसिंग या डिजिटल वेलनेस जिसको कहते हैं। तो अगर डिजिटल वेलनेस की हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है, जो हम भी डिजिटल गैजेट्स यूज कर रहे हैं, कौन मास्टर है, मैं हूं या मोबाइल है। एक टेस्ट करते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबके पास नोटपैड पेन है, यस और नो है, ठीक है। ये असेसमेंट जो है कि हम फोन एडिक्टेड जो हो जाते हैं, तो आपको यस और नो के बेसिस पे आंसर करने हैं। तो आप लिखते जाइएगा, जहां पे यस आए वहां वाई लिखते जाइएगा अपने लिए, जहां पे नो आए वहां पे एन लिखते जाइएगा, ठीक है। स्टार्ट करें, आर यू रेडी? रेडी? कोई एनर्जी नहीं है, यस, ठीक है, ठीक है। ये वाला जो सेशन जब हम करवाते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों आता है, तो साइंटिफिक अप्रोच भी कहीं कहीं हम थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए डिस्कस करेंगे। और ये सेशन सिर्फ कराने के लिए नहीं, लेकिन स्वयं के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी उसमें इन्वॉल्व हैं। चलिए, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप चूज करेंगे आप तीनों में से कौन से प्रोफेशनल्स में आते हैं, यंग प्रोफेशनल है, पेरेंट है या स्टूडेंट है, तो उस हिसाब से इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फाइंड योरसेल्फ स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन योर फोन देन यू रियलाइज, मतलब जितना आप समझ भी नहीं पाते उससे ज्यादा समय हम फोन पे बिताते हैं। हो गया? Do you find yourself mindlessly passing time on a regular basis by staring at your phone? कई बार हम बिना सोचे समझे रील्स देख रहे हैं, बस व्हाट्सएप देखे ही जा रहे हैं, बस वीडियोस देखे ही जा रहे हैं, तो माइंडलेसली यानी कि आपका माइंड यूज नहीं हो रहा, लेकिन हम कर रहे हैं, और ना ही आप सोच समझ के विचार करके प्लान्ड वे में कर रहे हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चले नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू सीम टू लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन ऑन योर फोन, जब हम फोन पे होते हैं कई बार हमें समय का पता ही नहीं चलता, घंटों बीत रहे हैं या कितना समय जा रहा है। सब मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फाइंड योरसेल्फ स्पेंडिंग मोर टाइम टेक्सटिंग ट्वीटिंग ईमेल एज अपोज्ड टू टॉकिंग टू पीपल इन पर्सन, मतलब भले बंदा सामने भी बैठा है तो भी हम ज्यादातर टेक्स्ट कर दिया, हाँ, या हमने आपको भेज दिया ईमेल, पोस्ट भेजा है, आप चेक कर लेना। तो मतलब जो कनेक्शन हम जनरली हम फोन पे उनसे बात कर सकते थे वो भी ना करके हम प्रेफर करते हैं कि हम टेक्स्ट कर दें या कुछ कर दें। चले नेक्स्ट। यस, No answer. Yes or no? Chale? Has the amount of your time you spent on your smartphone is being increasing day by day? थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है टाइम यूज करने का, स्क्रीन टाइम बढ़ता ही जा रहा है. मतलब जितना हम पहले यूज करते थे आज उससे ज्यादा करते हैं. डन. डू यू विश यू कुड बी अ लिटल लेस इन्वॉल्व विद योर फोन? का क्या आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं थोड़ा कम यूज करूंगी तो ठीक रहेगा? मतलब आपकी ये चाहना रहती है. डू यू स्लीप विद योर फोन टर्न्ड ऑन? फोन शुरू है मतलब हमने फ्लाइट मोड पे नहीं किया, बंद नहीं किया, और उसको ऐसे ही सिरहाने के पास रख के हम सो रहे हैं. चले नेक्स्ट. डू यू फाइंड योर सेल्फ व्यूइंग एंड आंसरिंग टेक्स्ट, ट्वीट एंड ईमेल्स एट ऑल आवर्स ऑफ द डे एंड नाइट, इवन व्हेन इट मींस इंटरप्टिंग अदर थिंग्स यू आर डूइंग? कई बार ऐसा होता है ना, आप हर चीज का रिप्लाई हर घंटे दे रहे हैं, तुरंत भी दे रहे हैं, या सारा दिन ही देते रहते हैं. हम 24/7 अवेलेबल हैं, हाँ, रिप्लाई करने के लिए, भले उसके लिए हमें दूसरी चीजों पर थोड़ा असर आ रहा हो. डन. फिर से 9 रुपए. करने में इतना मगन हो गए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कुछ ड्राइव कर रहे हैं या कोई ऐसी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपका फोकस चाहिए, उस टाइम भी आप फोन यूज कर रहे हैं, चाहे फोन सुन रहे हैं या टेक्स्ट कर रहे हैं या रिप्लाई कर रहे हैं? नेक्स्ट. क्या आपको ऐसा लगता है कि फोन ना होता तो शायद मैं और ज्यादा काम कर सकती थी, मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है? यस yes? नहीं, मुझे नहीं बताओ, अपना यस yes मार्क कर ले. ठीक है, नेक्स्ट चले. डू यू फील रिलक्टेंट टू बी विदाउट योर फोन इवन फॉर अ शॉर्ट टाइम? थोड़ी देर के लिए फोन इधर उधर हो जाए, थोड़ी बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, या पता नहीं कहाँ गया, कहाँ रख के भूल भी गए तो थोड़ा सा फोन कहाँ है, मतलब आदत हो गई है हाथ में फोन रखने की. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको अनकंफर्टेबल लगता है जब आप कहीं पर एक्सीडेंटली अपना फोन छोड़ आते हैं? मानो किसी के घर गए, वहां फोन छूट गया, कहीं मीटिंग पे गए छूट गया, और आपको या आपकी फोन टूट गया है, आपको सर्विसिंग उपलब्ध जल्दी नहीं हो रही है, एक दो दिन लगेंगे, तो आपको क्या लगता है? हाँ, तो अनकंफर्टेबल लगता है? सबकी स्माइल्स बढ़ती जा रही हैं. चले जी, सारे हैं, सारे हैं. अच्छा, नेक्स्ट. जब आप खाना खाते हैं तो हमारे बैठने के स्थान पर ही फोन का बैठने का स्थान होता है, तो इकट्ठे बैठते हैं, मतलब हम, फोन और मैं. बाबा कहते हैं कंबाइंड स्वरूप बनो, लेकिन बाबा के साथ से ज्यादा फोन के साथ कंबाइंड स्वरूप हो जाते हैं. यस. चले नेक्स्ट. When your small cell phone or smartphone ring beep करता है या buzz करता है, आपको intense urge होती है, मतलब बहुत अंदर से आता है कि मैं फटाफट reply कर दूँ उस text का, tweet का, email का, update का, तो मैं फटाफट उसके notification drawer में तो एक बार देख ही लेती हूँ क्या आया है, तो urge उसको कहते हैं. बल रिप्लाई हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देकर बाद में करें, लेकिन फटाफट बजा क्या है फोन में, वो देखने की अर्ज अंदर होती है वो. यस और नो? नेक्स्ट चले. लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि हम माइंडलेसली फोन चेक करते जा रहे हैं सारे दिन में कई बार, और जबकि आपको पता भी है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी आप करते जा रहे हैं सारा दिन? डन? अच्छा, अब अपने यस काउंट कर लें कितने आए, कितने यस आए काउंट कर लें। सोलह क्वेश्चंस थे, पंद्रह, एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो वो था आपका प्रोफेशन, और तो पंद्रह क्वेश्चंस में से कितने यस आए हैं वो काउंट कर लें। किनके यस तीन से कम आए हैं या तीन आए हैं, तीन या तीन से कम? अच्छा, वेरी नाइस। तो जिनके तीन और तीन से कम आए हैं, तीन आए हैं तो बॉर्डर लाइन है, जैसे डायबिटिक बॉर्डर लाइन होते हैं ना डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अभी कभी भी डायबिटीज हो सकती है, आप ध्यान रखना शुरू कर दे। तो अगर तीन पे भी है तो बॉर्डर लाइन है, फोर पे ट्रांसफर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपके फोर टू एट हैं तो माइल्डली एडिक्टेड हैं हम गैजेट्स के, और अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर नौ या नौ से अधिक है तो मुझे हेल्प चाहिए, यू नीड हेल्प, है ना, हमें मदद की जरूरत है। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल एडिक्शन क्या है। तो अब अपने आप को आंसर कर लें, मैं मास्टर हूं या तो एक्चुअली मैं मास्टर का मतलब क्या है, हम उसको ऑर्डर करें, तुम मेरे लिए ईमेल भेजो, तुम मेरे लिए ये कर दो, तुम मेरे लिए ये कर दो, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, फोन हमें क्या कहता है, मुझे चार्ज करो, हाँ वाईफाई नहीं आ रहा, वाईफाई दो, इंटरनेट दो, मेरे पास है नहीं, मुझे आंसर करो हर चीज का। तो इसका मतलब उल्टा हो गया है, मास्टर कौन हो गया है, फोन हो गया है, फोन या जो भी डिजिटल गैजेट हम यूज कर रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर पिक्चर, एक कार्टून पिक्चर किसी ने बनाई और न्यूज़पेपर में पब्लिश की, हेवन में, क्योंकि वो हेवन इसी को इमेजिन करते हैं ना, अगर आजकल हेवन में लोग जाए तो वो कैसे दिखाई देंगे? पहले हेवन में लोग जाते थे तो आपस में बातें करते हुए दिखाते थे, पीछे एंजल्स दिखाई है ना तो बातें कर रहे हैं, और अब हेवन में लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, हाथ में फोन तो है नहीं, एडिक्शन इतना ज्यादा हो गया हेवन में भी उसे हैबिट के साथ जा रहे हैं। तो हम यहां पर फिर मेन अपनी चीज शुरू कर सकते हैं। तो हम एडिक्टेड, एक्चुअली एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स का एडिक्शन नहीं है, ये एडिक्शन कैसे एडिक्शन की तरह काम करता है हम और आगे आगे समझते जाएंगे। तो पहले गांधी जी के तीन बंदर थे, कौन से, बुरा मत देखो, सुनो, बोलो, और अब क्या आ गया है, हम देखते भी नहीं है, हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, सारा कुछ एक ही जगह पे हो गया है, क्योंकि उसी की वजह से हम आपस में बातचीत ही नहीं करते, एक दूसरे को टाइम ही नहीं देते। तो इसीलिए इसका नाम किसी ने करेक्टली सेल फोन रखा है, सेल फोन माना जैसे जेल के अंदर कैद हो गए, इसीलिए इसका नाम सेल फोन रखा गया है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा हम इसके एडिक्टेड हो गए हैं कि एक्चुअली में जहां पर हमें जो कार्य करना चाहिए, जो वैल्यूज है, वो भी डिग्रेड होती जा रही है। तो पीपल नाउ अडेज, कोई डूब रहा होगा हाँ, मदद करने नहीं जाएंगे, एक भी फोटोज खींचेंगे भाई कुछ अलग हो रहा है। तो एक और एडिक्शन की छोटी सी वीडियो देखते हैं, इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये प्ले
प्लीज, जैस
प्लेइंग जैस,
स्मूदी
मेकिंग स्मूदी,
कैलेंडर
नो मीटिंग्स टुडे रिमेंबर, कम नेक्स्ट। at 9:30.
Fire off.
Fire off.
Open door.
Door open.
Sånn, så ska vi sätta en till.
Ah, ja. Open door.
Wrong voice command.
Open door.
Wrong voice command.
Open door.
Repeat that.
Open door.
I didn't understand that.
Hey, open door.
Play on the floor.
Higher.
हाँ तो हम आजकल बहन ने कहा ना चैट जीपीटी से सब कुछ हो जाता है वो भी हम आगे देखेंगे उसकी भी MIT स्टडी हुई है प्रॉपर तो हम इतने एडिक्टेड हो गए हैं और इतने डिपेंडेंट हो गए हैं तो वो डिपेंडेंट होने से मुश्किलात किसको आ रही है अब उसको तो वही वॉइस कमांड जाएगी जो आपने सही वॉइस के साथ की थी अब दांत का ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा ना तो डिपेंडेंसी न हो आधार न हो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं साधन साधना का आधार है पर आधार ही साधना बन जाए वो नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर हम ये चीज क्लियर कर सकते हैं कंटेंट आप थोड़ा अपना भी डाल सकते हैं मैं बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं लूंगी क्योंकि मुझे 1 बजे तक सेशन कंप्लीट करना है और इसमें कई सारी चीजें हैं जो हमें बेसिक्स में क्लियर करनी है So who is the master? कौन है अभी मास्टर मैं या फोन होना चाहिए मैं लेकिन अभी भी है कौन फोन तो इसीलिए ये कहा गया है उपनिषद के वर्सेस में कि मन ही एक मात्र साधन है मुक्ति का और बंधन का बंधन क्या है जब मन आधारित है इन्फ्लुएंस्ड है प्रभावित है आधारित है तो वो बॉन्डेज क्रिएट करता है यानी बंधन क्रिएट करता है और जब मन मुक्त है इन सब चीजों से फ्री है तो वो फ्रीडम की स्टेज लेके आता है हाँ मन के बंधन में बंध जाते हैं तो मन को इन्फ्लुएंस ना करें ये हमने ध्यान रखना है तो अब आजकल के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है क्या चैलेंज है फोन के बिना काम नहीं होता तो हमने ये थोड़ी कहा है कि फोन नहीं यूज करेंगे हम मास्टर बन के यूज करें मतलब रिस्पॉन्सिबल डिजिटल यूजर बने ना कि बॉन्डेज में ना आए हा सो करंट टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है सबसे बड़ा चैलेंज हम कैलोरीज को मैनेज करते हैं ना अब 2 कैलोरीज मैनेज करनी है चेक करना है सारे दिन में हम कितनी डिजिटल कैलोरीज लेते हैं डिजिटल कैलोरीज को काउंट कैसे करेंगे 1 मिनट स्क्रीन टाइम इज इक्वल टू 1 डिजिटल कैलोरी अब जैसे शरीर के लिए भी हम कैलोरीज लेते हैं तो उसमें फिक्स काउंट होता है कि शरीर को इतना यूज के लिए चाहिए ठीक इसी प्रकार से सारे दिन के साधनों के यूज के लिए भी हमें जितनी कैलोरीज चाहिए डिजिटल वो तो चाहिए उसके एक्स्ट्रा हम कितनी कंज्यूम कर रहे हैं ये देखना जरूरी है क्योंकि डिजिटल कैलोरीज का सीधा इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है ब्रेन और बॉडी पे पड़ता है दोनों पे पड़ता है उसके भी हार्मफुल इफेक्ट्स और आगे हम स्टडीज को देखेंगे तो डिजिटल कैलोरीज अब हमें कहां कहां से मिल रही है ये डेटा कोविड के टाइम का है अगर सिर्फ नेटफ्लिक्स को चेक करें 36,600 घंटे का कंटेंट था उसके ऊपर अभी तो और बढ़ गया होगा अमेजॉन प्राइम वीडियो 24,000 मूवीज हैं 2700 प्लस टीवी शोज हैं और 50 प्लस स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं अब इसमें फिर भी इंक्लूडेड नहीं है गेम्स न्यूज फेसबुक स्नैपचैट इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये सब इंक्लूडेड नहीं है ये सिर्फ इतना ही डेटा है अगर इससे भी ज्यादा हम देखें तो डेटा बहुत सारा है यानी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है तो हम कौन सी कैलोरीज यूज कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है, और जिस जितनी कैलोरीज ले रहे हैं वो फिर ओबेसिटी लेके आती है। हाँ, फूड से कैलोरीज खाते हैं तो फिजिकल ओबेसिटी आती है, और अगर डिजिटल कैलोरीज ले रहे हैं तो डिजिटल ओबेसिटी आएगी। डिजिटल ओबेसिटी माना उससे क्या होगा, ब्रेन में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा और ब्रेन की थिंकिंग को डिस्ट्रॉय करेगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आगे आगे हम थोड़ा साइंटिफिकली समझते जाते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है ब्रेन और थिंकिंग के ऊपर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल कौन सा चाहिए आजकल के टाइम पे, कौन सा स्किल चाहिए? कोई भी नहीं बोल रहे जी, स्किल तो चाहिए ना, भले हम स्पिरिचुअल फैसिलिटेटर्स बनेंगे लेकिन स्किल्स डेवलपमेंट भी तो साथ साथ ही करना पड़ेगा ना। स्किल्स नहीं होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, तो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ स्किल्स को भी साथ साथ डेवलप करना है। तो कौन सा स्किल चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, सेल्फ कंट्रोल, माइंड कंट्रोल जी, विल पावर, टॉलरेंस, ये शायद आप गेस ना कर पाए। सबसे इम्पोर्टेंट स्किल इज अटेंशन। सिंपल एक्सरसाइज करते हैं, व्हाट इज अटेंशन। आप 2 मिनट के लिए सारी चीजों को साइड कर दें, आराम से बैठे हुए एक्सपीरियंस करें कि आप जिस भी स्थान पे, सोफे पे, चेयर पे बैठे हैं वो कितना सॉफ्ट है, उसका टच क्या है, कैसा आपको फील करा रहा है, कितना कंफर्टेबल है, कितना हार्ड है, कैसा है, आपको क्या फील हो रहा है, उस चेयर को, सोफे को फील करें, टच को फील करें। किया? ओके, ठीक है। एक और एक्सरसाइज इसके साथ साथ करता है, फिर दोनों का हम एक साथ समझेंगे। इस हॉल में कितनी व्हाइट चीजें आपको दिखाई दे रही है, सबके नाम बताएं। देखें, हाँ बोलते जाएं, फास्ट बोलते जाएं। सोफा, एंजल्स, चद्दर, वॉल्स, स्क्रीन, ड्रेसेस और लाइट जी, वॉच, वॉच के अंदर का व्हाइट कलर और सॉरी रेलिंग भी व्हाइट है। ओके, और थोड़ा और डीपली जाते जाएं, और का व्हाइट है, व्हाइट कुर्ता, व्हाइट ड्रेस हो गया, फैन भी व्हाइट है, कर्टन व्हाइट है, और स्पीकर भी व्हाइट है, लाइट्स भी व्हाइट है, और हाँ क्या, टेबल कवर भी व्हाइट है, डायरी का पेपर भी व्हाइट है, प्रोजेक्टर भी व्हाइट है, प्रोजेक्टर स्क्रीन, अच्छा ये बीच का फ्लावर, फ्लावर पॉट के बीच के फ्लावर्स भी व्हाइट है, लैपटॉप का स्टैंड, फ्लोर, स्टेज, अच्छा ध्यान दीजिएगा। इस टच एक्सरसाइज में या ये कलर फाइंडिंग में हमने क्या किया, आपको कहा गया आपको सारे व्हाइट कलर बताने, आपको और कलर्स दिख रहे थे लेकिन आपने क्या किया, इग्नोर किया और व्हाइट के ऊपर अटेंशन दिया। अब अगर मैं आपको बोलूं आंख बंद करके बताएं आपने रेड कलर कहां कहां देखा, तो सारे ऑब्जेक्ट शायद हम कवर नहीं कर पाएंगे। क्यों क्यों? क्योंकि हमारा अटेंशन कहां था, व्हाइट के ऊपर था, क्योंकि आपको कहा क्या गया था, व्हाइट के लिए बताना है, तो इसलिए आपने जो चीजें दिख भी रही थी उसको भी इग्नोर किया और उसको रजिस्टर नहीं होने दिया। ठीक इसी तरह से जब आपको कहा गया कि आपको चेयर को फील करना है, चेयर के साथ साथ यहाँ सोफा भी है और भी, अगर मैं आपको कहूँ लाइट की वार्मथ को फील करो या फिर आप फैन को फील करो, फैन की पे अटेंशन दो, आपको क्या महसूस हो रहा है, तो तो हमारा अटेंशन वहां जाता। अब क्योंकि मुझे सिर्फ चेयर को फील करना था, चेयर के टच को फील करना था, मैंने फैन को इग्नोर किया, लाइट को इग्नोर किया, आसपास की सारी चीजों को इग्नोर किया जिस रूम को वार्मथ दे रही है ना। इसका मतलब जहां हमारा अटेंशन जाता है वहां एनर्जी फ्लो होती है। थोड़ा और आगे देखेंगे। सो ब्रेन के पास एक फैंटास्टिक फिल्टर है और अटेंशन उसका गेट है। इसीलिए दादी जानकी क्या कहती थी, बुद्धि पे अटेंशन के पहरेदार को बिठा दो। क्यों? क्योंकि जहां अटेंशन जा रहा है वहां एनर्जी फ्लो हो रही है, और जहां एनर्जी फ्लो हो रही है वहां पे लाइफ ग्रो हो रही है। मैं वैसे ही बन रही हूं, जहां अटेंशन दे रही हूं मैं वैसे ही बन रही हूं। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट ब्रेन साइंस से कनेक्शन है, ब्रेन की साइंस से कनेक्शन है, वो भी हम आगे समझेंगे। तो मुझे चूज करना है हर टाइम, मुझे चूज करना है कि मैं अटेंशन कहां दे रही हूं। बाबा क्या कहते हैं, संकल्पों पे अटेंशन दो। संकल्पों पे अटेंशन क्यों दे? क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है, वहां से ब्रेन सर्किट्स बन रहे हैं, आगे हम समझते हैं। तो अटेंशन का इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है वो भी हम समझेंगे। व्हाट इज इम्पैक्टिंग आवर अटेंशन, हमारे अटेंशन को कौन इम्पैक्ट कर रहा है? हमारे गैजेट्स के अंदर पड़े हुए एप्स। सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कोई खाना पकाना है, या मान लीजिए आप कोई विशेष सब्जी बना रहे हैं, आपने सब्जी के लिए छौंक चढ़ाया, साथ में आपको दूसरा काम करना था, आपने सब्जी का गैस बंद किया, फिर दूसरे काम करने के लिए चले गए, चावल भिगोने के लिए चले गए, फिर आप चावल भिगो के फ्री हुए, आप वापस से आए, आपने फिर से सब्जी का गैस ऑन किया, आपने फिर से छौंक लगाने के लिए तेल गर्म किया, लेकिन उतनी देर में आपको पता चला दूध वाला आ गया, आपने फिर से गैस बंद किया, फिर दूध लेने चले गए, फिर आप दूध लेके आए, आपने उसको गैस पे चढ़ाया पर फिर उसका स्विच बंद कर दिया, और फिर आपने फिर सब्जी के ऊपर फिर से छौंक लगाने दिया, कभी सब्जी बनेगी? बनेगी। क्यों? क्योंकि आप बार 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 दूसरी चीजों में स्विच हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं ब्रेन स्विचिंग पेनल्टी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की स्टडी है, प्रोफेसर है ग्लोरिया मार्क, उन्होंने कहा जितनी बार आप अटेंशन एक चीज से हटाते हैं आपको 23 मिनट 15 सेकंड लगते हैं वापस उस चीज पर अटेंशन गेन करने के लिए। मानिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, मानो फोन पे व्हाट्सएप आया, टिकटॉक आया, या आपका इंस्टाग्राम मैसेज आया, हमने वो रीडिंग छोड़ के वो मैसेज पढ़ा, तो क्या हो गया? डायवर्जन हो गया। अब जितना कंसंट्रेशन से आप पढ़ रहे थे वो वापस से उतना फोकस में आने में टाइम लगेगा। अब मैंने तीन शब्द यूज किए, सो प्रॉब्लमैटिक क्यों है ये, हम इन तीनों शब्दों को एक समझेंगे। छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, सबके पास नोटपैड पेन है, सब उसको खोल लें। खोल लिया? कोई आंसर नहीं है, नो, हो गया, चले। तो इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, आपको मल्टीटास्किंग इज अ लाई, ये फ्रेज है, लेकिन इसको लिखना कैसे है, आप ऐसे दो कॉलम ड्रॉ कर लीजिए जैसे ये ड्रॉ हुआ हुआ है, वन और टू, उसके नीचे वन और टू लिख लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको यही फ्रेज लाइन वन में लिखना है, मल्टीटास्किंग इज अ लाई, ऊपर लिखना आप, नीचे नहीं लिखना, अभी कॉलम के अंदर नहीं लिखना, ऊपर आप लिख लीजिए। तो जैसे मैं बोलूंगी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आप क्या करेंगे, ऊपर फर्स्ट कॉलम में एम लिखेंगे, फिर नीचे नंबर डालेंगे वन, फिर ऊपर लिखेंगे यू, फिर नीचे नंबर डालेंगे टू, मतलब आपको नंबरिंग देनी है वर्ड्स को। ठीक है, क्लियर हो गया? आपने लिखा M, आप लिखेंगे 1, U लिखा 2 लिखेंगे, L लिखा 3 लिखेंगे, T लिखा 4 लिखेंगे, तो ऐसे करेंगे, ठीक है? Your time starts now. ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है. डन. लगभग एक मिनट का समय आपने पूरा किया है. फिर से नीचे दो कॉलम बनाए, ऐसे ही दो कॉलम बनाए जैसे ये बनाए थे. अब आपको वन गो में लिखना है. रॉ नंबर 3 में लिखेंगे, फटाफट मल्टीटास्किंग इज अ लाई, और उसके नीचे उसको नंबरिंग देते जाएंगे. नाउ टाइम स्टार्ट्स नाउ. डन. मुश्किल से 20 सेकेंड या 30 सेकेंड लगे, अब डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड. इतना समय बच गया. क्यों? इसको कहते हैं ब्रेन स्विचिंग पेनल्टी. और साथ में ब्रेन इज नॉट मेंट फॉर एक्चुअली मल्टीटास्किंग, क्योंकि हम एक टाइम पे एक चीज को जब फोकस्ड वे में करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं. भले हमें 10 चीजें एक साथ करनी है उसको प्रायोरिटाइज करके, पर हम फोकस एक चीज पर करेंगे, अटेंशन एक चीज पर लेकर के आएंगे, तो वो काम बहुत एफिशिएंटली और बहुत फास्ट कंप्लीट होगा. अब मैंने 3 चीजें बोली, जैसे अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन. ये 3 चीजें, तीनों में अंतर क्या है? जैसे मान लीजिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए आप एक डार्क रूम में टॉर्च लेके जाते हैं, टॉर्च की बीम लाइट जहां जाती है दैट इज योर अटेंशन. आप फोकस करते हैं किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब आप उस बीम को वहां रखते हैं, दैट इज फोकस. और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगातार कंटिन्यूअसली वो लाइट पड़ती रहती है, वो कंसंट्रेशन है. और अगर आपका अटेंशन, मान लीजिए आप टॉर्च ऐसे 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 से हिलाते रहेंगे, फॉर एग्जांपल, आप देख पाएंगे प्रॉपर? जो कार्य करने गए हैं वो नहीं हो पाएगा. तो इसलिए अटेंशन इज द की. तो हमने चूज करना है अटेंशन कहां जा रहा है, और दूसरा फोकस्ड होके एक चीज में एनर्जी फ्लो करनी है अटेंशन की, ताकि वो कार्य जल्दी भी हो और फास्ट भी हो जाए. आप मल्टीटास्किंग कर रहे थे, दो काम ही कर रहे थे एक साथ, बस नंबरिंग देनी थी और साथ साथ में लिखना था, एक फ्रेज को नंबरिंग देनी थी, तो टाइम लगा ना. आपने वही काम फटाफट किया, एक लाइन में लिखा, फिर दूसरी लाइन में नंबरिंग दी, फास्ट हो गया, कितने सारे सेकंड्स बच गए. सो ये ब्रेन को प्रॉपरली हम कैसे यूज करें उसकी वो हमने समझा. तो डिजिटलाइजेशन का हार्मफुल इफेक्ट क्या है, हमने ये दोनों क्यों समझा? क्योंकि ब्रेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ब्रेन कैंसर इंक्रीज के वो चांसेस बढ़ जाते हैं, न्यूरॉन कनेक्टिविटी कम हो जाती है. न्यूरॉन कनेक्टिविटी क्या है? जब हम ब्रेन में, मान लीजिए ब्रेन स्विचिंग पेनल्टी जो कि उसका भाव क्या था, मैं आपको थोड़ा सा इसमें हमें समझने के लिए है साइंटिफिकली. जब भी हम ब्रेन की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन, हम सबको पता है ना, एक छोटा सा न्यूरॉन होता है और वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, और ब्रेन की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन माना जाता है अकॉर्डिंग टू साइंस. तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करते हैं इंटरनली ब्रेन के अंदर, एक स्टोरेज हाउस की तरह है, स्टोरेज रूम की तरह है. तो कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो ब्रेन के अंदर वो न्यूरॉन में जाके स्टोर होती जाती है. जिस तरह की इंफॉर्मेशन लगातार आती जाएगी, मतलब हम रिपीटेडली उसको करते जाते हैं, उस तरह के इन्फॉर्मेशन के न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टिविटी करते जाते हैं और वो कनेक्टिविटी करके एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं और वो नेटवर्क अंदर से फिर आगे आत्मा उस रूप से शरीर, फिर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली बॉडी भी कार्य करती है। तो ये छोटा सा हमने यहां समझा। तो न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है डिजिटलाइजेशन का ज्यादा यूज करने से, मतलब टू मच, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे भी। हाइपर एक्टिविटी फास्ट और क्विक हो जाते हैं लेकिन अटेंशन नहीं होता, फोकस नहीं है एक काम पे ऊपर, काम बहुत सारा है, जल्दी कर रहे हैं लेकिन एक में भी जितना रिजल्ट आना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी लूज हो जाती है। डिप्रेशन और फोमो, ये आजकल बहुत टर्म चल रहा है फोमो। फोमो का फुल फॉर्म किसी को पता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, कि हमने अगर सोशल मीडिया पर ये पोस्ट नहीं किया या मैंने फास्ट रिप्लाई नहीं किया या ये काम नहीं हुआ तो शायद मैं उस ग्रुप से या लोगों को ये लगेगा, ये इसको कहते हैं मिसिंग आउट, कि शायद इनको वो नहीं है। तो दिस इज फियर एक्चुअली, तो वो इंक्रीज होता जाता है। तो अटेंशन को हम यूज करते हैं वर्क, तो उसमें क्या है, हाई क्वालिटी वर्क कब प्रोड्यूस होगा, जब जितना टाइम स्पेंड उस पर किया जाना चाहिए और फोकस की इंटेंसिटी आपकी इसमें क्या है। सो क्रिएटिंग अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरमेंट हम बनाएं जब भी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं। इसको आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में, मैं इसमें ज्यादा नहीं, जब मुझे 1 बजे डॉट पूरा करना है ना। तो अटेंशन इज लाइक ऑक्सीजन टू योर माइंड। तो यहां पर न्यूरोप्लास्टिसिटी हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है ये साइंटिफिक टर्म है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, जो ब्रेन फ्लेक्सिबल हो और जो ब्रेन अपने आप को मोल्ड कर सके अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू जिस चीज के लिए चाहिए। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है हमारी हैबिट्स बनाने में काम करती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज ब्रेन में हो रहा है, आत्मा में हो रहा है, आप कंफ्यूज नहीं होना। आत्मा में संस्कारों की रिकॉर्डिंग हो रही है। इस लाइफ की करंट यहां पर हमें जो इस बॉडी के साथ जो हैबिट्स बन रही हैं वो ब्रेन के अंदर कनेक्टिविटी हो रही है। तो आत्मा के कर्मों के अकॉर्डिंगली IQ लेवल पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, ये आप समझ रहे होंगे ना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे मेंटली डिसेबल्ड या स्पेशल होते हैं तो वो उनके कार्मिक अकाउंट्स के कारण भी होता है, तो उस IQ के कारण वो इस लाइफ की इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी नहीं कर सकते। तो ये भी आपको क्लियर है। तो आत्मा और साइंस यहां दोनों साथ साथ चलती हैं। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि ब्रेन आपकी हैबिट्स को जो फॉर्म हो रही है उसको स्टोरेज की तरह रिपीट करता यूज करता है। तो जितना आप किसी कार्य को रिपीटेडली करते जाते हैं उतने न्यूरल कनेक्शंस बनते जाते हैं, इंटरनली वो नेटवर्क्स बनते जाते हैं और वो नेटवर्क्स फिर वैसे आगे कार्य कराने के लिए, ये सिर्फ आपकी समझ के लिए, आपको क्लियर हो रहा है कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म क्लियर हो रहा है ना, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके है, ठीक है। लर्निंग का, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी घास का मैदान है, इसको अगर सिंपल वे में समझें तो आप उस घास के मैदान के ऊपर चलना शुरू करें, एक ही पाथ पे रोज चले तो क्या होगा, वहां उस पाथ की घास थोड़ी दब जाएगी, हल्का कच्चा रास्ता बन जाता है। आप और चलना शुरू करें, थोड़ी पगडंडी बन जाती है ना, और चलना शुरू करें कच्ची सड़क बन जाती है, और चलना शुरू करें हाँ यूज होना उसका और शुरू हो जाए तो पक्की सड़क बन जाती है। ठीक इसी तरह से ये संस्कार फॉर्म होते हैं अंदर न्यूरल कनेक्शंस के द्वारा। जो ये मेमोरी ट्रैक्स बनते हैं, ये दोनों काम बिना न्यूरोप्लास्टिसिटी के नहीं हो सकते हैं। अगर आप अपने ब्रेन को कहते हैं वरी तो वो चिंता युक्त हो जाएगा, क्योंकि आप उसको क्या शब्द दे रहे हैं, चिंता 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 चिंता, तो
वो चिंता युक्त हो जाएगा। और अगर आप उसको कहेंगे कॉन्सेंट्रेट करो तो वो कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करेगा। इसीलिए इसीलिए ब्रेन को तथास्तु मशीन कहा जाता है। अगर हम अपनी स्पिरिचुअलिटी में बात करें, हम कहते हैं ना, हम अपने आप को ही श्रापित करते हैं और अपने आप को ही वरदानी मुहूर्त बनाते हैं। वो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस उसी अकॉर्डिंगली बनने शुरू हो जाते हैं और उसी अकॉर्डिंगली बॉडी भी एक्ट करती है। इतना गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम फिर से आते हैं, तो जो भी आप कहेंगे करने के लिए वो कहेगा तथास्तु। आप कहेंगे ये नहीं हो सकता, ब्रेन क्या कहेगा, तथास्तु मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, शरीर में भी एनर्जी शुरू हो जाएगी। अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं सब ठीक है, हो जाएगा, चलो करो, तो कहेगा तथास्तु, हो सकता है, शरीर भी साथ देना शुरू कर देगा। हाँ, तो यहां पर ये फैंटास्टिक तथास्तु मशीन है। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी का इसको हम हाँ अब क्यों हमने ये समझा न्यूरोप्लास्टिसिटी, जितनी हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या जो भी चीजों की, वो अंदर जाके स्टोर होती जा रही है और अंदर जाके स्टोर होके वो ब्रेन रॉट का काम करती है। रॉट क्या होता है वो हम थोड़ा और आगे समझेंगे। डिजिटल गैजेट्स आर एडिक्टिव। तो पहले हम चीजों को एज अ टूल यूज करते थे, हाँ, जब चीजें इतनी हमारे पास नहीं थी। और जब चीजों को हम टूल के तरह से यूज करते थे, एज अ साधन यूज करते थे, तो वो हमें हर तरह से इम्पैक्ट डालते थे। लेकिन अब हम चीजों में एडिक्शन में चले गए हैं तो ये हमसे बार बार और ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि मुझे यूज करो। सो हमने क्या किया, हमने टूल बेस्ड टेक्नोलॉजी से एडिक्शन बेस्ड टेक्नोलॉजी में मूव कर लिया है। सो डिजिटल एडिक्शन को अगर हम करें तो हम क्या करते रहते हैं, डिजिटल एडिक्शन मतलब तीन चीजें उसके लिए बेसिकली आती हैं, माइंडलेस स्क्रोलिंग, एमलेस, बिना किसी रील्स देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, 1, 2, 3 लगातार देखे जा रहे हैं, एमलेस स्टारिंग, बिना लक्ष्य के देख रहे हैं, और नॉन स्टॉप वॉचिंग, घंटों बीत जाते हैं फिर लगता है अब सोने का टाइम आ गया, चलो बंद करो। इन्फॉर्मेशन जो यूजफुल चाहिए थी वो नहीं आए, उसी टाइम को कहीं प्रोडक्टिविटी में यूज कर सकते थे। लेकिन एडिक्शन कब बनता है, जब कोई चीज हमें इजीली एक्सेसिबल हो, है ना, आराम से मिल गई हो और आराम से हम उसको अफोर्ड कर पा रहे हो, खरीद सकते हो, तो वो एडिक्शन को बढ़ाता है। तो हमने एडिक्शन को खत्म करने के लिए क्या करना है, हाँ क्या करना है, क्या करें जी, हाँ जी, दूर रहे, यूज ना करें, यूज जो यूज नहीं करने ऐप डिलीट करते हैं, वो तो हम ऐसे भी ज्यादातर यूज नहीं करते, जो अनयूज है वो पड़े ही हुए हैं और जो यूज हो रहे हैं वो कुछ ज्यादा बिना काम के यूज हो रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। बहुत इजी तरीका है, एडिक्शन इंक्रीज कैसे होता है, किसी चीज की इजीली एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो, दोनों चीजों को आप यूज करें। इजीली एक्सेसिबल ना हो, मेरी रीच के बाहर हो, मेरी पहुंच के बाहर हो, और दूसरा अफोर्डेबल ना हो, मतलब मुझे दिखाई देगी तो मैं यूज करूंगी ना, मुझे दिखाई नहीं देगी तो मैं यूज नहीं करूंगी, तो उस हिसाब से मुझे अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। डिजिटलाइजेशन का क्या हार्मफुल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, साउथ कोरिया में टीनेजर्स डायपर्स पहन के वीडियो गेम्स खेलते हैं, क्योंकि अगर वो वीडियो गेम से उठ गए तो उनकी वो गेम की प्रोग्रेस यंग एडल्ट, हाँ 18 से 20 साल, 18 से 24 साल वाले, ये अभी का पुराना डेटा है, अभी तो और आगे इसका देखेंगे। ये विड्रॉल सिम्टम्स हैं, मैं लंबी वीडियो नहीं दिखाऊंगी, एक बच्चे को इतना फोन का एडिक्शन था और उसको जब छोड़ने के लिए कहा गया तो उसके ये सिम्टम्स
हैं। You can't have your cell phone tonight. You can't have your cell phone tonight. You can't have your cell phone. You can't have your cell phone.
अपने फादर को ही मारने के लिए तैयार है।
Stop acting like that. Calm down. No cell phone. Calm down. You want it taken away for 2 days? Do you want it gone for 2 days? Then stop.
ज़्यादा लंबा नहीं चला रही। तो मोबाइल हमारे ब्रेन के इम्पैक्ट उसी एरियाज पे इम्पैक्ट करता है जैसे कोई ड्रग इम्पैक्ट करती है. सो इट इज जस्ट लाइक अ कोकेन. हम ये ना समझे छोटी चीज है. अगर हम एडिक्टेड हैं तो हमें इसके ऊपर स्टार्ट करना चाहिए कार्य करना. ये कुछ डेटा है. 9 साल का रोहन जो एक एनिमेशन बेस्ड शो देख रहा था जिसमें लड़ाइयां होती थी, एक्शन वाला ज्यादा देखता था, तो जिसके बाद अब उसने वैसा ही एक्ट करना शुरू कर दिया. ये न्यूज़पेपर की कटिंग है. एक केस और है, कार्टून शो की फैन थी अनन्या 10 साल की, उसने कार्टून की तरह चलना शुरू कर दिया, कार्टून की तरह ही बोलना, वो जो डॉल जैसा करती थी वैसे ही करना शुरू कर दिया बिहेव. तो उसकी हैबिट्स वैसे की तरह, वैसे की वैसे फोन.
एक मदर अपने 4 साल,
ये मैं वीडियो नहीं लेती, थोड़ी लंबी है, इसको कहते हैं वर्चुअल ऑटिज्म, तो विकृत कर देता है जैसे. तो हमने क्या करना है रिवर्स करने के लिए, अगर इतना एडिक्शन है, जीरो स्क्रीन प्रोटोकॉल. हम कोशिश करें जो चीजें मैनुअल हो सकती हैं उसको करना शुरू करें. 6 महीने के अंदर ड्रास्टिक परिवर्तन आए जब जीरो स्क्रीन प्रोटोकॉल यूज किया गया, जो ऐसे एडिक्शन में थे जो बिना उसके काम नहीं कर सकते. कंप्लीट डिजिटल फास्टिंग 4 हफ्ते की, कोई भी डिजिटल चीज यूज नहीं करेंगे, सारी चीजों को नॉन इलेक्ट्रिक टॉयज के साथ रिप्लेस कर दिया गया. फिजिकल एक्सरसाइजेस, सोशल डाइनिंग मतलब सबके साथ मिल करके बैठ के खाना खाएं, पेरेंटल मॉडलिंग. सो अब करना क्या है, आप रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं, 5 चीजें लिखें जो आप अपनी डायरी पे जो आप रिलैक्स करने के लिए करते हैं. 5 चीजें लिखें जब आपको रिलैक्स करना होता है, आप क्या करते हैं. हो गया, बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुत तो नहीं सोचना पड़ रहा. क्या लिखा आपने, 5 चीजें क्या लिखी आप रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं. मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, स्लीपिंग, जी ईटिंग, स्ट्रेसफुल ईटिंग तो नहीं है ना, ये भी नोटिस करने की जरूरत है. स्ट्रेसफुल ईटिंग है तो ओवर ईटिंग हो गई. म्यूजिक, वॉकिंग, आंखें बंद करके 2 मिनट बैठ जाना, मुरली के पॉइंट्स लिखना, रीडिंग, वेरी नाइस. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलैक्सेशन एंड स्टिमुलेशन. आप कभी बाहर नॉन बीकेस में कराएंगे ना, तो वो भी यही कहते हैं, हम रिलैक्सेशन के लिए कभी कोई मूवी देखने चले जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं. तो यहां पर ये डिफरेंस बताना बहुत जरूरी है. रिलैक्सेशन का मतलब होता है जिसमें हम कम सोचें और धीरे सोचें, वो एक्टिविटीज रिलैक्सेशन एक्टिविटीज कहलाई जाती हैं. स्टिमुलेशन का मतलब है थिंक डिफरेंट, कुछ अलग अलग तरीके सोचो और ज्यादा सोचो. तो जब हम मोबाइल देख रहे हैं, स्क्रीन यूज कर रहे हैं, हम स्टिमुलेट हो रहे हैं ना कि रिलैक्स कर रहे हैं. और कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड ब्रेन वीक और स्ट्रेस्ड ब्रेन है. तो ब्रेन रॉट किसको कहते हैं. रॉट माने जैसे कोई चीजें सड़ जाती है ना, तो ऐसे अगर हद से ज्यादा चीजें इंफॉर्मेशन अंदर पड़ी हुई है जो यूज भी नहीं हो रही वो ब्रेन रॉट का काम करते हैं। तो ब्रेन दैट डजंट फीड इट्सेल्फ ईट्स इट्सेल्फ, उसका क्या सिम्टम्स है, मेंटल फटीग, थके थके रहते हैं दिमाग से, कॉग्निटिव डिक्लाइन caused by excessive screen time and consumption of low quality online content. तो हमने क्या करना है, रिलैक्सेशन के लिए डिजिटल चीजों को छोड़ के जो एक्टिविटीज प्रैक्टिकली रिलैक्स कर सकती है उनको यूज करना है। ये हम छोड़ रहे हैं। हाँ, ये एक MIT स्टडी लास्ट 5 मिनट्स में लूंगी और फिर पूरा करूंगी। चैट GPT पे के ऊपर एक MIT स्टडी हुआ, MIT स्टडी जिसके अंदर 444 कॉलेज एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को लिया गया जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के थे, जिस मार्केटिंग, HR और डेटा एनालिस्ट थे, अलग अलग तरह के फील्ड के थे। जो एक ग्रुप बनाया गया उनको चैट GPT का एक्सेस दिया गया, एक दूसरा ग्रुप बनाया गया कंट्रोल्ड ग्रुप जिसके पास एक्सेस चैट GPT या कोई भी AI सर्विसेज अलाउड नहीं थी। तो उनको करना क्या था, हर पार्टिसिपेंट को 2 राउंड्स में कंप्लीट करना था। राइटिंग टास्क उनको दिया गया जिसमें उनको मेमोज ड्राफ्ट करने थे या कोई रिपोर्ट लिखने के लिए उनको दिया गया, और जब इवैल्यूएशन किया गया था, इवैल्यूएशन जो होना था उसके फील्ड्स क्या थे, इवैल्यूएशन प्रोसीजर, आउटपुट क्वालिटी का होना चाहिए, एक्यूरेसी, परसुएसिवनेस और कंप्लीटिंग टाइम, हर चीज रिकॉर्ड होनी थी। तो आप ये स्टडी के रिकॉर्ड्स को देखिएगा जरा ध्यान से, तो जिन लोगों ने चैट GPT को यूज किया गया उनके ब्रेन को स्कैन किया गया, उनकी जो ब्रेन कनेक्टिविटी थी वो शार्पली ड्रॉप हो गई 79 पॉइंट से 42 पॉइंट्स पे, 47% ड्रॉप है ब्रेन यूज होने का। एंड सबसे लोएस्ट कॉग्निटिव प्रोडक्टिविटी थी जो काम उन्होंने किया, ये है उसका ब्रेन का दिखाया गया। तो चैट GPT या कोई भी AI सर्विसेज हमें हेल्प करने के लिए बनी है, लेकिन हमारे ब्रेन को खराब करने के लिए नहीं बनी, यूज करने के लिए बना है। ब्रेन यूज ही नहीं हो रहा और वहां पे फ्लूड पास ऑन हो रहा है, इसलिए वो इसमें ज्यादा ऐसा दिखा रहा है। तो जो लोग थे जिन्होंने हाथ से किया था, जिनको AI एक्सेस नहीं था, उनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा, और जो चैट GPT यूजर्स थे जिन्होंने सारे रिपोर्ट्स में उसको यूज किया, 83.3% यूजर्स को याद ही नहीं था उन्होंने लिखा क्या रिपोर्ट के अंदर, और AI की जो चीजें होंगी वो तो याद कैसे रहेंगी क्योंकि ब्रेन यूज ही नहीं हुआ। तो की टेक अवेज क्या है, हमें AI को अवॉइड नहीं करना है बट यूज करना इंटेंशनली। आजकल हम हर चीज के लिए कैलकुलेटर, हर चीज के लिए AI का यूज कर रहे हैं, जहां पर हमें स्वयं को यूज करना है वहां पर हम खुद को यूज करें, ब्रेन को यूज करें, नहीं तो ब्रेन की क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। यूज नहीं हो रही जो चीज वो क्या होगा, तो इसीलिए क्या करना है, ये चीजें हमें असिस्ट करने के लिए बनाई गई हैं, अपने माइंड को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाई गई हैं। तो ये ध्यान रख के करना है। तो ये कॉग्निटिव स्ट्रेंथ को हमने बढ़ाना है, डिपेंडेंट नहीं होना है। AI इंटेलिजेंट है बट बॉस नहीं है मेरा। तो सोशल मीडिया की लाइफ एक्चुअली में ये दिखाई देती है, पीछे से एप्पल कैसा सामने से बड़ा फ्रेश दिख रहा है। तो इसीलिए लोग सोशल मीडिया पे देख के क्या सोचते हैं कि हम शायद कुछ मिस कर रहे हैं, फोमो इंक्रीज हो जाता है। मैं थोड़ा कट शॉर्ट कर रही हूँ फास्ट। तो जो सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, लोनली फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, हाँ हर बार ब्लू टिक आए, मेरा मैसेज पढ़ लिया या नहीं पढ़ा, ब्लू टिक नहीं आया, लाइक नहीं आया, क्या अगर अच्छा लाइक दिया लोगों ने तो क्या लाइक दिया, क्या कमेंट दिया, और उस कमेंट के बेसिस पर हम अपनी वो बना लेते हैं, हाँ सो ये भी डिसेबिलिटी क्रिएट करता है, डिप्रेशन, सुसाइड, इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं रेट्स। पबजी गेम याद है किसी को, जो इंडिया में बैन हो गई और अभी इंस्टॉलेशन लिंक भी नहीं है। पबजी का एक बच्चा बहुत ज्यादा पबजी खेलता था, उस बच्चे के ब्रेन में क्लॉट्स बन गए, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा ड्यू टू एक्सेस एडिक्शन। ये बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं इसको थोड़ा आगे करती हूँ। ये गाजियाबाद का केस है, एक छोटी दो ट्विन सिस्टर्स ने सुसाइड किया, डायरी पे पापा के लिए नोट लिख के गए कि इस डायरी में जो कुछ लिखा है वो सब सच है, हमने जो कुछ भी उन्होंने लिखा होगा फादर के लिए नोट छोड़ के गए। सो सोशल मीडिया इज इलेक्ट्रॉनिक कोकेन। चाणक्य नीति में ये कहा गया है कि किसी भी चीज की अति के कारण अंति होता है लास्ट में। तो उन्होंने क्या किया, अधिक सौंदर्य के कारण सीता का हरण हुआ, अति गर्व के कारण रावण का दहन हुआ, फिर अति दान के कारण राजा बलि को बंधन प्राप्त हुआ, पता है ना आपको इसकी कहानी। और हर जगह जहां अति हो जाती है किसी भी चीज की, वो अंत लेकर के आती है। तो एडिक्शन है माना अति है, तो हमें अति को अति की ओर नहीं जाना है, बैलेंस्ड अप्रोच लेके आनी है। तो डिजिटल साइलेंस लेना है, ये हमारी अटेंशन, प्रोडक्टिविटी, ये सब इंक्रीज करता है। डिजिटलाइज कैसे हो, लास्ट में कुछ शॉर्ट टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे, फिर मैं सेशन को वाइंड अप करती हूँ। तो ये हमने डिस्कस किया, जो साधना है, साधन के लिए आधार दिया गया है, साधन आधार है साधना के लिए। तो डिजिटलाइजेशन, डिजिटल में क्या दो वर्ड्स यूज होते हैं, जब स्टोरेज स्टोर करते हैं तो क्या यूज होता है, पॉइंट जीरो या वन, ये दो ही फिगर में आपकी हर इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है डिजिटल में, डिजिटल वर्ल्ड में, कुछ भी हम डिजिटल करते हैं तो जीरो का, वन का मतलब क्या है, एक चीज एक टाइम पे करनी है, फोकस्ड होके करनी है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ करनी है। और जीरो का मतलब क्या है, पुटिंग अ फुल स्टॉप, जो नहीं करना वो नहीं करना, रिलैक्सेशन, रिलैक्स्ड माइंड और काम माइंड रखना है। जीरो वन मीन्स क्लैरिटी आएगी और अपने माइंड को हैंग नहीं करें, हैंग हो जाता है ना, जैसे सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है तो काम नहीं करता, तो माइंड को हैंग ना करें। डिजिटल साइलेंस एक्टिविटीज में क्या करना है, अपना मोबाइल फोन हम डाइनिंग टेबल पे ना रखें, चलो अगर मानो रखते भी हैं फॉर एग्जांपल यूज ना करें, हर काम पोस्टपोन किया जा सकता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं साइंस ये कहती है हम उसके कलर, टेक्सचर, उसके स्वाद, जैसे आपने अटेंशन से देखा चेयर को, महसूस किया, शायद आपने चेयर महसूस ही नहीं की थी, कितनी सॉफ्ट है, कितनी हार्ड है, कैसा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। तो ऐसे ही जब हम खाना खाएं तो कंप्लीट कॉन्शियसनेस के साथ खाना खाएं कि हम क्या खा रहे हैं, तो थोड़े से में बहुत अच्छा पेट भर जाता है। तो इसीलिए फोन को यूज ना करें, डिसइंफेक्ट करें, अपने मोबाइल फोन को बाथरूम में ना लेकर जाएं, हाँ बाथरूम में भी लेके जाते हैं, सोचिए कितने सारे बैक्टीरिया हैं हमारे फोन के अंदर, कितने बैक्टीरिया लेके हम सारा दिन चल रहे हैं, तो उसको क्लीन भी करना है। जैसे हम रोज अपने आप को, शरीर को नहलाते हैं, तो मोबाइल को भी थोड़ा सैनिटाइज करने की जरूरत है। मोबाइल 10 फीट की दूरी पर हो जब हम सोए, ये छोटी छोटी टेक्निक्स है। अपने मोबाइल फोन को ही अलार्म की तरह यूज ना करें, याद है आपको छोटे छोटे अलार्म क्लॉक आते थे, हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, हाँ क्योंकि वैसे भी बजता रहता सुनाई नहीं देता वो और ही अच्छे का काम करता है, वो उससे एक ही रिंग में उठ जाता है। तो एक्चुअली हम उसको यूज करें, मोबाइल को टच ना करें सोने से एक दो घंटा पहले और जागने के एक दो घंटे बाद, और अपने बच्चों से भी मोबाइल फोन्स को थोड़ा दूर करें। अनप्लग्ड, ये स्विच ऑफ नोटिफिकेशन, जो हम नोटिफिकेशन ड्रॉवर को ऑन करके रखते हैं ना, तो स्क्रीन पे भी दिखाई देता है क्या नोटिफिकेशन आया, उसको हम ऑफ कर सकते हैं। और एक घंटे जाग, हाँ एक घंटा पहले और बाद में हमने डिस्कस किया, बेडरूम ई फ्री कर लें, स्क्रीन फ्री, बाहर कहीं छोड़ दें घर में, या अलमारी में बंद कर दें या कहीं और छोड़ दें, तो हम डिजिटल फ्री हो सकते हैं। वंस अ वीक हम डिजिटल फास्टिंग करें, नेचर में, ग्रीनरी में, प्रकृति में जाके टाइम स्पेंड करें और अपने मोबाइल के प्रति दयाहीन हो जाएं। हम उसको दया दिखाते, बेचारा अकेला कैसे पड़ा रहेगा, बोर हो जाएगा। तो इसीलिए तो ये मोबाइल पहले यूज किया जाता था। तो अगर कोशिश करें तो हम ये भी कर सकते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है ऐसा भी नहीं कहेंगे। ओम शांति।